हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो की है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर दरुणबिंबफल धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् हरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि। करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे पिबस्वा मृत्युमेतदेव गोविंद दामो धरमाधवेति। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशो। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन शो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 12 जिसका शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। तो हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी पहले चतुर्ष कुमार को उत्पन्न करते हैं, उसके उपरांत रुद्र, और रुद्र के उपरांत जब उन्हें वो कहते हैं कि भाई आपको अब सृष्टि नहीं करनी है बल्कि तपस्या करनी है, तो अपने विभिन्न अंगों से विभिन्न 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, और उसके उपरांत ब्रह्मा जी एक कन्या को उत्पन्न करते हैं जिसके विषय में मैत्रेय मुनि कहते हैं, वाचम दुहितरम तन्वी स्वयंभूर हरती मना आकामां चकमेखता सकाम इति न श्रुतम्। श्लोक नंबर 28 एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए। वाचम दुहितरम तन्वी स्वयंभूर हरति मना अकामां चकमेक्षत ततः सकाम इति न श्रुतम् वाचम दुहितरम तन्वीम। वाचम मतलब वाक, वाक मतलब वाक उसका नाम था। दुहितरम मतलब पुत्री, तन्वीम मतलब उसके शरीर से उत्पन्न, ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुई उनकी पुत्री जिसका नाम क्या था, वाक। स्वयंभूर हरति मना, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी का, हरति मतलब आकर्षित करते हुए, हरण करते हुए मना उनका मन। जैसे ही पुत्री उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा जी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। अकामम चकमे क्षतः, अकामम मतलब कामुक हुए बिना, चकमे इच्छा की, क्षत हे विदुर। सकाम इति न श्रुतम, सकाम यानी कामुक हुआ, इति इस प्रकार, न मना हमने श्रुत यानी सुना है। मैत्र मुनि विदुर जी को सृष्टि किस तरह से ब्रह्मा ने बनाई उसके विषय में बता रहे हैं, और विभिन्न पुत्रों के उत्पन्न करने के बाद जब ब्रह्मा जी के द्वारा एक पुत्री उत्पन्न हुई उनके प्रति वे कहते हैं इति न श्रुत, हमने ये सुना है, मतलब मुझे तो विश्वास नहीं है, मैंने सुना है ऐसा हुआ था। लेकिन अब जो भी महान लोग करते हैं उनके पीछे हमारे लिए शिक्षा होती है। तो श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, अनुवाद देखिए। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा की वाक नाम की पुत्री थी जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकर्षित किया, यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बलवान इंद्रिय क्रामो विद्वांसम अपि कर्षति, बलवान इंद्रिय ग्रामो, ये इंद्रियां इतनी बलवान है, ये इंद्रियां ग्रामो मतलब जो हमारी सारी इंद्रियां हैं, आंख जब देखती है तो वो मन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, जब जीवा से हम कुछ खाते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, कानों से सुनते हैं तो उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, स्किन को अगर त्वचा को कोई स्पर्श कर लेता है तो आकर्षित करता है, और कोई साधारण को नहीं, विद्वान समपि कर्षति, जो बुद्धिमान होते ना उनका भी पतन हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 1.19.17 में कहा गया है कि इंद्रियां इतनी प्रबल प्रमत्त तथा प्रबल होती हैं कि वे अत्यंत ही विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई व्यक्ति अपनी माता बहन या पुत्री के साथ भी अकेले में ना रहे। विद्वान स्मम अपि कर्षति का अर्थ यह है कि बड़ा से बड़ा विद्वान भी काम वासना का शिकार बन जाता है। ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के प्रति कामासक्त थे, अतः उनके इस अनियमता को बतलाने में मैत्री हिचक रहे थे, फिर भी उन्होंने उसका उल्लेख किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा घटित हो ही जाता है, और इसके जीवंत उदाहरण स्वयं ब्रह्मा जी हैं। यद्यपि वे आदि जीव हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक विद्वान हैं, यदि ब्रह्मा जी काम वासना के शिकार हो सकते हैं तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो अनेकानेक संसारी दुर्बलताओं के प्रति उन्मुख होते हैं। ब्रह्मा की यह असाधारण अनैतिकता किसी विशेष कल्प में घटित हुई सुनी गई थी। ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये साधारण जीवों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जो भी महान भक्त लोग या महान जीवों के द्वारा भगवान कार्य करते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए शिक्षा होती है। जैसे भीष्म पितामह के द्वारा दुर्योधन यानी अधर्म का साथ देकर उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा, ये हमारे लिए शिक्षा है। चाहे हमें इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों ना मिल जाए, चाहे हम कितने ही विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन अधर्म का साथ देंगे तो अवश्य हमारा पतन होगा। उसी तरह से ब्रह्मा जी का ये जो कार्य है कि अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित हो जाना, ये इसलिए है कि ताकि हम जैसे साधारण जीवों को यह बतलाया जा रहा है कि कि इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं, इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए। और ये यहाँ श्री रूपा जी एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की यह असाधारण नैतिकता किसी विशेष कल्प में घटित हुई सुनी गई थी, किंतु यह उस कल्प में नहीं घटित हो सकती थी जिसमें ब्रह्मा ने भगवान के प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोक सुने थे, क्योंकि भागवत का उपदेश देने के बाद भगवान ने ब्रह्मा को यह वर दिया था कि वे किसी भी कल्प में मोहित नहीं होंगे। इससे यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवतम सुनने के पूर्व वे ऐसी कामवासना के शिकार हुए होंगे, क्योंकि किंतु भगवान के मुख से श्रीमद् भागवतम सुन लेने के बाद ऐसी त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं थी। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोक की भागवतम सुना दिया और भगवान ने ब्रह्मा को कहा कि अब आप सृष्टि कीजिए, तो ब्रह्मा ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, सृष्टि करूंगा तो रजोगुण के द्वारा प्रेरित हो जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं सृष्टि करूं और उसमें उलझ कर मैं आपके प्रति आपसे दूर होता जाऊं, क्योंकि इतनी समस्त ब्रह्मांड की रचना करनी होगी। तो ब्रह्मा ने जब भगवान के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया, तो भगवान ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सृष्टि करोगे लेकिन किसी भी कल्प में मोहित नहीं होगे, तुम रजोगुण से प्रेरित नहीं होगे, गुण तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये वरदान देने से पहले कोई ऐसा कल्प होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के तो कल्प होते रहते हैं, एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, सृष्टियां होती रहती हैं, तो ये गलती किसी कल्प में हो गई उनसे। लेकिन भागवतम श्रवण करने के बाद जब भगवान ने वरदान दिया, तब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर तो ऐसी त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं। फिर भी मनुष्य को इस घटना की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मानव एक सामाजिक पशु है और स्त्रियों के साथ अनियंत्रित मेलजोल से उसका पतन हो जाता है। पुरुष तथा स्त्री की ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता विशेष रूप से युवा वर्ग में निश्चय ही आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में महान अवरोध है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि पुरुष तथा स्त्रियों का इस तरह से स्वतंत्रता से मेल नहीं होना चाहिए, बल्कि एक डिस्टेंस बना रहना चाहिए। ये अनियंत्रित मेल जोल से जीव का पतन हो ही जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही गंभीर बात बता रहे हैं, वे कहते हैं कि भाव बंधन एकमात्र यौवन बंधन के कारण है। ये भाव बंधन किस लिए है? बार बार जन्म मरण का चक्कर केवल यौन संबंध के कारण है। बस किसी के प्रति आकर्षण हो जाना और मरने के बाद बस उसी को सोचते रहना, तो क्या होगा? भाव बंधन के अतिरिक्त क्या? बस वो प्रेम यदि काम वासना के गंध से दूर हो जाए, ये काम वासना की कीचड़ यदि कृष्ण प्रेम के ऊपर से हट जाए, तो केवल कृष्ण प्रेम रह जाएगा और फिर तो भवबंधन समाप्त हो जाएगा। हमारे हृदय में जो प्रेम है उसको हमें प्योर करना है, और वो उसका एक ही तरीका है कि जो मन हम संसार को दे बैठे हैं, जिसके प्रति हम संसार की ओर आकर्षित हो रहे हैं, बस वो मन भगवान के चरणों में लगाना है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं भवबंधन एकमात्र यौन बंधन के कारण है, फलतः पुरुष तथा स्त्री की अनियमित संगति अवश्य ही आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में महान अवरोध है। ये स्त्री पुरुष के प्रति जो आकर्षण है वो आया कहाँ से? जब हर एक वस्तु भगवान से ही निकलती है, तो ये तो असाधारण है ना, कि कोई भी पुरुष यदि कोई भी स्त्री को देखता है तो उसकी ओर आकर्षण हो जाता है। क्यों होता है? इसका एक ही कारण है कि वो ये जो प्रेम है, वो प्रेम की भावना भगवान ने हमको दी है, और वो प्रेम भगवान पर न्योछावर करने के लिए है। लेकिन हम क्योंकि अज्ञान के कारण अविद्या के अंधकार में डूब गए हैं, तो हम समझते हैं ये प्रेम हमारे शरीर की आवश्यकता है। वास्तव में ये शरीर की आवश्यकता है ही नहीं। शरीर तो तब भी पड़ा रहता है जब उसमें से आत्मा निकल जाती है। क्या वो कभी चाहता है वो शरीर कि मुझे यौन संबंध की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि वो शरीर की आवश्यकता नहीं है। ये वास्तव में काम वासना नहीं है। निज इंद्रिय तृप्ति वाचा तार नाम काम। जब जीव अपनी इंद्रिय को तृप्ति करने की इच्छा करता है तो वो प्रेम हो ही नहीं सकता। गंदा कर दिया, बदनाम कर दिया हमने इस संसार में आकर प्रेम के इस शब्द को। प्रेम कभी शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं होता है। दावा प्रेम का और आरजू जिस्म की, यदि ये प्रेम है तो हवस क्या है? ये केवल काम वासना है। और उस प्रेम को यदि काम वासना की गंदगी से दूर करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। उससे बढ़कर सुंदर और कोई संबंध नहीं है। इसलिए यहां पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पुरुष तथा स्त्री की अनियमित संगति अवश्य ही आध्यात्मिक प्रगति में के मार्ग में महान अवरोध है। मैत्रेय ने ब्रह्मा का यह उदाहरण इस भीषण खतरे के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए ही प्रस्तुत किया है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैत्रेय मुनि नहीं बताते थे, लेकिन हमको बताने के लिए, हमको सिखाने के लिए कि कितना खतरनाक है ये, कितनी खतरनाक आग है जिसमें आज हम अपनी युवा पीढ़ी को धकेलते जा रहे हैं। आगे बताते मैत्रेय मुनि कि जब ब्रह्मा अपनी पुत्री की ओर आकर्षित हो गए और उनकी ओर बढ़ने लगे तो उनके जो दूसरे पुत्र हैं, अभी उन्होंने पुत्रों को उत्पन्न दिया था ना, मरीचि और इत्यादि दूसरे जो ऋषि पुत्र थे, उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी इतना घृणित कार्य करने जा रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं तमा धर्मे कृतमातिम विलोक्य पितरम सुता मरीचि मुख्या मुनयो वृषम्भात् प्रत्यबोधयन् तम धर्मे कृतमिति। तम यानी उस अधर्म में यानी अनैतिकता में कृतम कृत मतिम ऐसे मन वाला, यानी जब उन्होंने देखा कि हमारा पिता उस अधर्म या अनैतिकता के कार्य में जा रहा है, विलोक्य मानी देखकर पितरम यानी पिता को सुता यानी पुत्रों ने, अपने पुत्रों ने, कौन से पुत्रों ने, मरीचि मुखिया मुनयो, मरीचि मुखिया यानी मरीचि इत्यादि मुनया मुनिगण ने विश्रम्भात पिता का अनादर नहीं किया। वो गलत कार्य करने जा रहे थे, फिर भी यहाँ से शब्द दिया गया विश्रम्भात, आदर सहित प्रत्यबोधयन उनसे निवेदन किया, पिता को प्रेम से आदर के साथ सम्मान के साथ बोला। अनुवाद देखिए, अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मुग्ध पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदर पूर्वक यह कहा। श्री प्रभुपाल जी कहते हैं मरीचि जैसे ऋषि द्वारा अपने महान पिता के कार्यों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने में कोई त्रुटि नहीं थी। वे बलि बांधे जानते थे कि यद्यपि उनके पिता ने त्रुटि की है, किंतु इस घटना के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण रहा होगा, अन्यथा इतना महान पुरुष ऐसी त्रुटि नहीं कर सकता। तो मरीचि ऋषि और दूसरे जितने कोई भी बड़ा प्राणी यदि कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने अनादर नहीं किया। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो जानते थे कि ब्रह्मा जी जो ये कार्य करने जा रहे हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद होगा, कोई बहुत बड़ा कारण होगा, वरना हमारे पिताजी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हो सकता है कि ब्रह्मा जी अपने अधीनस्थों को स्त्रियों से व्यवहार करते समय मानो दुर्बलताओं के प्रति आगाह करना चाह रहे हों। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम जो ब्रह्मा जी की प्रजा हैं, हम ब्रह्मा जी की संतान हैं, और ब्रह्मा जी हम सबको हमारे मन और इंद्रियों की दुर्बलता के विषय में आगाह करना चाहते हैं। वो हमें शिक्षा देने चाहते हैं कि देखो, इंद्रियों को इस तरह से खुला छोड़ा नहीं जा सकता, उन पर सदैव कंट्रोल रखना होता है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों के लिए यह सदैव अत्यंत घातक है। अतः ब्रह्मा जैसे महापुरुष जब त्रुटि करते हैं, तब ना तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ना ही मरीचि जैसे महर्षि उनके असामान्य आचरण के कारण उनके प्रति किसी प्रकार का अनादर प्रदर्शित कर सकते थे। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मरीचि आदि उनके पुत्रों ने उनको बहुत समझाया और बोले, नहि तत् पूर्वाय कृतम् त्वत्ये न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितरं गच्छे अनिग्रह्यांगजं प्रभु। नहि तत् पूर्वे पिताजी, न एतत्, न एतत् मतलब नहीं, कभी भी नहीं, एतत् ऐसी वस्तु पूर्वे किसी पूर्व काल में अन्य किसी ब्रह्मा द्वारा या तुम्हारे द्वारा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आप तो करोड़ों करोड़ों कल्पों से सृष्टि की सृजन करते रहते हैं। न एतत् पूर्वे कृतम्, ऐसा तो पहले कभी किसी ने नहीं किया। त्वत् यानी तुम्हारे द्वारा, ये यानी वह जो न यानी ना तो, करिष्यन्ति चापरे, करिष्यन्ति करेंगे चापरे यानी अन्य कोई, ना कभी पूर्व में कभी किसी ब्रह्मा ने सृष्टि करते वक्त ऐसा किया कि अपनी ही पुत्री के साथ संभोग, और ना ही कभी, न करिष्यन्ति चापरे, ना ही कभी भविष्य में ऐसा कभी कोई करेगा। यस त्वम द्वहितरं गच्छेत्, यस त्वम, जो त्वम मना आप, द्वहितरं अर्थात अपनी ही पुत्री के प्रति गच्छेत् यानी के आकर्षित हो रहे हो या उनकी पीछे पड़ रहे हो, अनिग्रह्य अनियंत्रित होकर, अंगजम काम इच्छा से, प्रभु हे पिताजी। अनुवाद देखिए, हे पिता, आप जिस कार्य में अपने खुल जाने का प्रयास कर रहे हैं उसे ना तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, ना किसी अन्य के द्वारा, ना ही पूर्व कल्पों में आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया है, ना ही भविष्य में कभी कोई ऐसा दुसाहस करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्चम प्राणी हैं, अतः आप अपनी ही पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड में सर्वोच्चम पद है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा अनेक है, और जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उसके अतिरिक्त अनेक ब्रह्मांड हैं। जिस पद पर स्थित रहने वाले का आचरण आदर्श होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा सारे जीवों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक पवित्र तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चस्थ जीव ब्रह्मा को भगवान के पद का पद प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, न एतत् पूर्वे कृतम् त्वद्ये न करिष्यति चापरे, कि पहले कोई ब्रह्मा ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने ऐसा किया, और ना ही भविष्य में कोई ब्रह्मा आकर ऐसा करेगा। तो ब्रह्मा भी बदलते जाएंगे, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, बहुत सारे ब्रह्मा हैं। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत महान पद है, भगवान के बाद ब्रह्मा जी का पद है, क्योंकि भगवान का जो सबसे श्रेष्ठ कार्य अर्थात इस संसार की सृजन करना, वो उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंपा है। ब्रह्मा पितामह है, और उनके द्वारा जो भी कार्य होगा वो तो आदर्श प्रस्तुत करेगा। अगर वो भी इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगे तो फिर दूसरे लोगों के लिए तो ये बहुत गलत आदर्श स्थापित होगा। इसलिए उनके पुत्रों ने उन्हें कहा, ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको ये कहते यस्तुम द्वितरम गच्छेर अनिक्रियं गजम प्रभु, आपको अपने ऊपर वश करना पड़ेगा, अपने को नियंत्रित करना पड़ेगा। और आगे कहते हैं तेजी यसाम अपिये तन्ना सुश्लोक्यम जगत कुरु यद्रितमनु तिष्ठन्वे लोक क्षेमाय कल्पते। तेजीयसामपि ये तन्ना, तेजीयसाम मतलब अत्यंत ही शक्तिशालियों में, अपि भी ही निश्चय ही, एतद ऐसा कार्य न उपयुक्त नहीं, सुश्लोक्य अर्थात अच्छा आचरण, जगत गुरु हे ब्रह्मांड के गुरु, आप तो सबके लिए शिक्षा प्रदान करने वाले हो, तो आपको ये कार्य शोभा नहीं देता, आप बहुत शक्तिशाली हो। तो जो शक्तिशाली होता है वो कोई भी कार्य कर सकता है, मगर वो ये सोच कर करे ना कि मेरे ऊपर ये कार्य शोभा देता है या नहीं करता। तो यत वृत्तम, यत माने जिसका, वृत्तम यानी चरित्र, अनुष्ठन्ति पालन करते हुए, वह निश्चय ही लोक यानी जगत, क्षेमाय कल्पते संपन्नता के लिए, कल्पते यानी योग्य बन जाता। अब क्यों बड़े जो महान शक्तिशाली लोग होते हैं उनका तो सब कोई अनुसरण करते हैं ना, तो सब लोग आपके चरित्र का अनुकरण करेंगे, तो आपको ऐसा कोई गलत कार्य तो नहीं करना चाहिए। अनुवाद देखिए, यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते, कहा जाता है कि परम शक्तिशाली जीव जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और ऐसे कार्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई बहुत शक्तिशाली जीव होता है तो वो अगर कोई कार्य करता है तो उसका प्रभाव कैसे नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, उदाहरणार्थ इस ब्रह्मांड में सूर्य सबसे शक्तिशाली अग्निमय ग्रह है, वह कहीं से भी जल को बाप बना कर उड़ा सकता है और फिर भी उतना ही शक्तिशाली बना रहता है। सूर्य गंदे स्थानों से जल को उड़ाता है, फिर भी वह गंदगी के गुण से संदूषित नहीं होता। उसी तरह ब्रह्मा सभी दशाओं में महाभियोग से मुक्त बने रहते हैं, किंतु फिर भी सारे जीवों के गुरु होने के कारण उनके आचरण तथा चरित्र को इतना आदर्श होना चाहिए कि लोग ऐसे उदात आचरण का अनुकरण कर सकें और सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ उठा सकें, अतः उन्हें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने किया। अब इतना तो उन्होंने समझाया मरीचि आदि ऋषियों ने कि भाई आप तो सबके लिए आदर्श हो, आपको ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, और ऐसा तो कोई नहीं करता, कभी किसी कल्प में किसी ब्रह्मा ने ऐसा किया भी नहीं है और ना ही कभी कोई आईना ऐसा करेगा, तो आपको अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, आपको ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए। इतना समझाने के बाद भी ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया, फिर उन्होंने एक उक्ति निकाली कि अब इनको इस कार्य से निकालने का, इनके मन से काम को खत्म करने का एक ही तरीका है। तब तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा, तस्मै उसे, नमः अर्थात नमस्कार भगवते यानी भगवान को, तब उन्होंने भगवान को नमस किया। य इदम स्वेन रोचिषा, य मना जो, इदम यानी इस स्वेन अपने, रोचिका यानी तेज से, आत्मस्थम अपने में ही स्थित, व्यंजमा आस यानी प्रकट किया, सह वह धर्म یعنی دھرم کو. پاتم ارہسی, پاتم یعنی رکشا کرنے کے لیے, ارہتی ایسا کریں. اب سارے رشیگن, مرشی آدی جو رشیگن ہیں وہ بھگوان کو پرنام کرتے ہیں, بھگوان کو نمسکار کرتے ہیں اور بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ آپ اب برہما جی کے دھرم کی رکشا کیجیے. انواد دیکھیے, ہم ان بھگوان کو سادر نمسکار کرتے ہیں جنہوں نے آتمست ہو کر اپنے ہی تیج سے اس برہمانڈ کو پرکٹ کیا ہے, وہ سمست کلیان ہیتو دھرم کی رکشا کریں. شیلا پروپاد کی جے. شیلا پروپاد جی کہتے ہیں سمبھوگ کے لیے کام اچھا اتنی پربل ہوتی ہے کہ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ برہما کو مریچی جیسے ان کے مہان پتر اپنی یاچنا کے باوجود بھی ان کے سنکلپ سے ویرت نہیں کر پائے. اتہ ان مہان پتروں نے برہما کی ست بدھی کے لیے بھگوان سے پرارتھنا کرنا شروع کر دیا. یا تو ایک ماتر بھگوان کی کرپا ہی ہے جس سے منوشیہ کو کام اچھاؤں کی لالسا سے بچایا جا سکتا ہے. یہاں شیلا پربھوپاد جی بتا رہے ہیں کی کام اچھا اتنی پربل ہوتی ہے کہ بدھی پرشٹ ہو جاتی ہے, اور چاہے کتنا ہی سد اپدیش کیا جائے, کتنا ہی یاچنا کی جائے, کتنا ہی سمجھایا جائے, لیکن کام اچھا اتنی پربل ہوتی ہے کہ وہ اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر اس سے بچنا ہے تو یہاں شیلا پربھوپاد جی ایک سندر اپائے بولتے ہیں کہ یہ تو ایک ماتر بھگوان کی کرپا ہی ہے جس سے منوشیہ کو کام اچھاؤں کی لالسا سے بچایا جا سکتا ہے. کیول کرشن کرپا کر سکتے ہیں. تو پھر مریچی آدی نے سوچا کہ اب یہ تو سمجھ رہے نہیں, یہ تو بھگوان کو پرنام کیا. بھگوان ان بھکتوں کو سنرکشن پردان کرتے ہیں جو ان کی دیویہ پریما بھکتی میں سدیو لگے رہتے ہیں, اور وہ اپنی اہیتو کی کرپا سے بھکتی کو اس کے اکسمات پتن سے بچا لیتے ہیں. یہاں شیلا پربھوپاد جی بتا رہے ہیں کہ بھگوان اپنے بھکتوں کو سدیو سنرکشن پردان کرتے ہیں, سدیو ان کی سنرکشا کرتے ہیں جو بھگوان کے بھکتی میں پریما بھکتی میں سدیو لگے رہتے ہیں. پھر ان کے ہرے میں کام اچھا ہوتی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اتنے ینگسٹرز ہوتے ہیں, اتنے اچھے بھکت ہوتے ہیں جو کہ برہمچاری آشرم کو سویکار کر لیتے ہیں, گھیروا پہنتے ہیں, ان کو کوئی یون اچھا نہیں ہوتی, ان کو کوئی کام اچھا نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے اپنا سارا کا سارا پریم کرشن کے چرنوں میں انڈیل دیا ہوتا ہے. پھر ان کو کام اچھا کبھی بھی آتر نہیں کرتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اسکون میں کیول برہمچاری کی ہی شکشا دی جاتی ہے, گرست دھرم کا بھی پالن ہوتا ہے, لیکن ہم دیکھتے کتنے لوگ برہمچاری بن جاتے ہیں, کیونکہ جب کرشن سے پریم ہو جاتا ہے نا پھر سنسار پھیکا لگنے لگتا ہے. پھیکا ہی نہیں, وہ سنسار الٹی کی طرح گھنت لگنے لگتا ہے, اس کو کوئی سویکار کرنے کی اچھا ہی نہیں رہ جاتی. اس لیے بھگوان ان دیویہ پریما بھکتی میں سدیو لگے رہتے ہیں, ان کو اپنی اہیتو کی کرپا سے اپنے بھکت کو اکسمات پتن سے بچا لیتے ہیں. اتہ مریچی جیسے رشیوں نے بھگوان کی کرپا کے لیے پرارتھنا کی, اور ان کی پرارتھنا فلدائی رہی, اور جیسے انہوں نے بھگوان سے پرارتھنا کی تو بھگوان نے ہردے میں بیٹھے برہما جی کو گیان پردان کیا, اور ان کے ہردے سے یہ کام اچھا کی بھاونا سماپت ہو گئی. اور برہما جی کو بہت دکھ ہوا کہ میں نے اتنا غلط کاریہ کرنے کی کوشش کی, اور برہما نے اسی سمے اپنے اس شریر کا تیاگ کر دیا. حالانکہ برہما کو شریر پراپت ہوتا ہے پورے ایک کلپ ان کا ایک دن ہوتا ہے, اور 4,32,00,000,000 ورشوں تک برہما جی کا ایک دن ہوتا ہے, اور بہت بہت سمے تک برہما جی کا جیون ہوتا ہے. لیکن برہما جی نے دیکھا کہ میں نے اپنے اس شریر کے ساتھ اتنا گھرنت کاری کیا ہے, تو انہوں نے فوراً سے اپنے اس شریر کو تیاگ دیا. میتری منی کہتے ہیں سئتھم گرنتا پتران پورو درشٹوا پرجاپتی پرجاپتی پتیستنیوم تتیاج وریڈیتستدا تام دیشو جگرہو گھورنام نیہارم यद्विदुस्तमा स इत्थम गृणता पुत्रम स मनवः यानी ब्रह्मा जी इत्थम गृणतम इस तरह गृणत अर्थात बोलते हुए पुत्रान यानी अपने पुत्रों को जब उन्होंने अपने पुत्रों को देखा कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मेरे लिए दृष्ट्वा जब ऐसा देखा तो प्रजापति जीवों के पूर्वजों को प्रजापति पति ही उन सबों के पिता यानी ब्रह्मा प्रजापति पतिस्त्वं तत्याज त्वन्नम यानी शरीर तन्वम यानी शरीर तत्याज मतलब त्याग कर दिया उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया व्रीडिता और बहुत ज्यादा लज्जित हो गए तदा उस समय बहुत ज्यादा लज्जित हो गए उनको शर्म आ रही थी और उन्होंने उसी समय अपने उस शरीर को त्याग कर दिया ताम दिशो जगरी हो घोरम ताम मना उस शरीर को दिशा सारी दिशाएं जगरी हो स्वीकार किया घोरम यानी निंदनीय निहारम यानी निहार या कोहरा यत जो विधु तमा विधु मना वे जानते हैं तमा यानी अंधकार के रूप में इस संसार में जो अंधकार है जो तमा है कोहरा है वही ब्रह्मा जी का शरीर है और इसीलिए जहां अंधकार होता है वहीं अपराध होता है और जहां पर प्रकाश होता है वहीं पर ज्ञान होता है इसलिए अंधकार के अज्ञान से बचने के लिए ज्ञान के प्रकाश की ओर आना होगा और एक ही तरीका है कि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करें और जैसे जैसे हम जप करते रहते हैं तो भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं फिर मैं उन्हें ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता हूँ तेषां एवं वानुकंपार्थम अहम् अज्ञानजं तम मैं उनके ऊपर कृपा इतनी करता हूँ कि अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देता हूँ ज्ञान और उसके बाद क्या करता हूँ नाशयाम आत्मभावस्थम ज्ञान दीपेन भास्वता उनके अज्ञान के अंधकार को समाप्त करके ज्ञान के प्रकाशमान दीपक को प्रज्वलित कर देता हूँ अनुवाद देखिए अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया बाद में वही शरीर अंधकार में भयावह कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपने पाप में कृतियों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रायश्चित का सर्वोत्तम उपाय अपने शरीर को तुरंत त्याग देना है और जीवों के नायक ब्रह्मा ने इसे अपने उदाहरण से दिखला दिया ब्रह्मा की आयु असीम होती है किंतु उन्हें अपने घोर पाप के कारण जिसे उन्होंने मन में केवल सोचा था वास्तव में किया नहीं था अपना शरीर त्याग दिया किया नहीं था जस्ट सोचा था ऐसा करने का लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं इतना गलत कार्य करने के लिए सोचा तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया यह जीवों के लिए शिक्षा है जो यह दिखलाती है कि अनियंत्रित यौन जीवन में संलग्न होना कितना पापपूर्ण कृत्य है कितना अपराध है कि उसके बाद तो जीने का अधिकार ही नहीं है घृणित यौन जीवन के विषय में सोचना भी पापपूर्ण है और ऐसे पापपूर्ण कृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए मनुष्य को अपना शरीर त्यागना होता है दूसरे शब्दों में मनुष्य की आयु वरदान ऐश्वर्य इत्यादि सभी बातें पापपूर्ण कृत्यों से घटती हैं और सबसे भयावह पापपूर्ण कृत्य है अनियंत्रित यौन संबंध तो इसका कोई उपाय नहीं है शरीर ही दूषित हो जाता है केवल सोचने से केवल इतना सोचा ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं किया और उन्होंने सोचा कि ये सोच मेरे शरीर के द्वारा आई और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं आपके पास जो कुछ भी है वो सब समाप्त हो जाएगा मतलब शरीर का मतलब क्या है हमारी आयु उससे रिलेटेड हर एक वस्तु ऐश्वर्य ज्ञान बुद्धि वो सब समाप्त हो जाता है और सबसे भयानक जो पाप कृत्य है वो है अनियंत्रित यौन संबंध पाप में जीवन का कारण अज्ञान है अथवा पाप में जीवन ही निपट अज्ञान का कारण है। ये अज्ञानता है। अज्ञान की विशेषता है अंधकार या कोहरा। जहाँ अंधकार है वहीं अज्ञान है। अंधकार या कोहरा अब भी सारे ब्रह्मांड को आच्छादित किए हुए और सूर्य एकमात्र उसका प्रतिकार है। अज्ञान है, अंधकार है, तो उसको खत्म करने का केवल एक ही तरीका है, सूर्य। जो व्यक्ति नित्य प्रकाश रूप भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान सूर्य की तरह प्रकाशमान है, और जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे कोहरे या अज्ञान के अंधकार में विलोप होने का भय नहीं रहता। फिर वो भगवान उन्हें कभी भी अज्ञान के अंधकार में घिरने नहीं देते। भगवान उनके ऊपर अनुकंपा करते हैं। तेषामे वानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पवित्र नाम का जप करो, मेरे मन से अपना संबंध बनाओ और मैं तुम्हारे जीवन में आ जाऊंगा, तो किसी प्रकार का कोई अंधकार अज्ञान या कोई भी घृणित भावना तुम्हारे मन में आने नहीं दूंगा। और जैसे ही ब्रह्मा जी के लिए भगवान से प्रार्थना की गई, ब्रह्मा जी के मन से ही अपराध की भावना ही समाप्त हो गई। और फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मुझे चारों वेदों को ना निर्माण करना है और सृष्टि की बहुत अच्छी अच्छी रचना करनी है, तो उसके लिए मैत्री मुनि कहते हैं, कदाचिद्यायतः सृष्टु वेदा आसंश्चतुर्मुखा कथं स्त्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। कदाचित् ध्यायत, ध्यान करते, कदाचित् फिर किसी समय ब्रह्मा जी ध्यान करते हुए सृष्टु यानी ब्रह्मा का वेदा यानी वैदिक वाम गए, वैदिक वांग्मय आसन यानी प्रकट हुए, चतुर्मुखा चारों मुखों से, और ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से वेदों को, चार वेदों को प्रकट किया। कथम स्त्रक्ष्यामि, मैं किस तरह सृजन करूंगा, और फिर उन्होंने ये सोचा कि मुझे किस तरह से संसार का सृजन करना है, अहम यानी मैं, लोकान समवेतान यथा, लोकान यानी इस सारे लोकों को समवेतान एकत्रित, यथा पुरा जिस तरह, यथा माना जिस तरह वे थे, पुरा यानी भूतकाल में, पहले किस तरह से संसार की सृष्टि भगवान ने की थी, अभी मुझे फिर से करनी है, और उन्होंने फिर से सृजन का कार्य शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने चार वेदों को अपने मुखों से प्रकट किया। अनुवाद देखिए एक बार, जब ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोगों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद जिनमें सभी प्रकार की ज्ञान निहित हैं, उनके चारों मुखों से प्रकट हो गए। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से हमें समझा रहे हैं कि जिस तरह अग्नि बिना दूषित हुए हर वस्तु को क्षार में क्षार कर सकती है, उसी तरह भगवत की कृपा से ब्रह्मा की महानता रूपी अग्नि ने उनकी पुत्री के साथ पाप पूर्ण योनाचार की उनकी इच्छा को क्षार कर दिया। जैसे ही भगवान की कृपा से याचना की गई, उनके हृदय से वो सारी गंदगी जो है वो समाप्त हो गई। और वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, और जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के विचार कर रहे थे, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से वे सर्वप्रथम ब्रह्मा को ही उद्घाटित किए गए। अब ब्रह्मा को वो वेद प्रकट हो गए। ब्रह्मा अपनी भगवत भक्ति के कारण शक्तिशाली हैं। भगवान अपने उस भक्त को सदैव क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं जो कदाचित अपनी भक्ति के सन्मार्ग से पतित हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं। अवगुण करे समुद्र सम गिनत न अपनो जान। राई के सम भजन को खिनत है मेरु समान। अब कुन करे समुद्र सम किनत न अपनो जान। अगर कोई करोड़ों अपराध भी करता है फिर भी भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, वो उन अपराधों को नहीं देखते, वो तो राई के सम भजन को अगर थोड़ा सा भी भजन करते हैं तो वो समझते हैं भाई ये भजन तो उसने मेरु के समान किया है, थोड़ा सा भजन सोलह माला क्या बात है यार, है ना, सोलह माला डेढ़ घंटे में कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पूरा जीवन अपराध करते हैं, करते आए, ना जाने इस जीवन में नहीं ना जाने कितने करोड़ों जन्मों से तो अपराध करते ही आ रहे, तभी तो दूर हैं, और तभी तो मन में अभी तक विषय वासना है, भोग करने की इच्छा है, लेकिन वो उन अपराधों को नहीं देखते, वो तो थोड़े से भजन को देखते हैं, थोड़े से प्रेम को देखते हैं और क्षमा कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम 11.5.42 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बताया जा रहा है, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावास्य हरि परेश विकर्म यच्चोत्तपतिम कथम चित धुनोति सर्व हृदि संनिविष्ट। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य, स्वपाद मूलम, जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों पर उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, त्यक्त्वान्य भावस्य हरि परेश, बस छोड़ देता है सब कुछ और वह भगवान को बहुत प्रेम करता है, वह भगवान हरि को अत्यंत प्यारा है, वो भगवान से प्रेम करता है, और भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि, तुम प्रेम करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ प्रेम करूंगा, और भगवान क्या करते जानते हो, बहुत सुंदर है, विकर्म यच्चोत् पतितं कथं चेत् धुनोति सर्व हृदि संनिविष्ट। वो धो लेते हैं अपने हमारे सारे अपराधों को, कैसे, धुनोति सर्व हृदि संनिविष्ट, हृदय के अंदर आकर बैठते हैं, अपराध भी तो हृदय के अंदर ही होता है ना, और फिर उन अपराधों को साफ करने का, हृदय की सफाई करने का ठेका ले लेते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, अनुवाद देखिए, जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों पर उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह भगवान हरि के को अत्यंत प्रिय है, और भगवान भक्त के हृदय में स्थित होकर संयोग वश किए गए सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर देते हैं। यह कभी भी आशा नहीं की जाती थी कि ब्रह्मा जैसा महापुरुष अपनी पुत्री के साथ संभोग करने का विचार भी करेगा। ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया उदाहरण केवल यह निर्देशित करता है कि भौतिक प्रकृति की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह किसी पर भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा पर भी अपना प्रभाव दिखा सकती है। ब्रह्मा जी अत्यल्प दंड के साथ भगवत कृपा से बचा लिए गए, किंतु भगवत कृपा से महान ब्रह्मा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं हुई, लेकिन भगवान अपने भक्त पर अपनी कृपा सदा बनाए रखते हैं। भक्त के हृदय में यदि कोई अपराध की भावना आ भी जाती है तो भी धुनोति सर्व हृदि संनिविष्ट, वो हृदय में बैठे बैठे उस अपराध को समाप्त कर देते हैं, और वो तो कह चुके कौन्ते प्रति जानी है नमे भक्त प्रणश्यति, बस घोषणा कर दो, ऐलान कर दो कि अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने दूंगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर दे, भगवान से प्रेम करने की पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, बाकी हमारी जिम्मेदारी वो खुद ही उठाएंगे, हमको बस भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, उनको उनको याद करना है, उनकी कथाओं को श्रवण करना है, अवश्य हमारे हृदय के सारे अपराध ساری گندگی وہ صاف کر دیں گے اور اپنے پارشدوں میں ہمارا نام لکھ لیں گے. ہری کرشنا آپ سب کا بہت بہت آبھار. کرپیا مجھے آشیرواد دیجیے, میرے لیے پرارتھنا کیجیے کہ میں اپنی سیوا اور سادھنا کو بہت اچھے سے کر سکوں. ہری کرشنا.